તારીખ 30/12/1993 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 783 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 10
કામ કર
સ્મરણ સુધી આગળ જાણવા પડતા હૈ
इसलिए मन से आगे जाना पड़ता है कि स्मरण को विस्मरण की भी कभी अपेक्षा हो जाती है, जिस विपक्ष में कोई चीज खड़ी है तो स्मरण विस्मरण की अपेक्षा से पार जाते थे। गोल लक्ष्य को हमने हमारा लक्ष्य बना दे, किस हद तक हम परिचय करें तो चीज हमारे परिवर्तन से छूटने वाली नहीं होगी, जहां से छूटेगी नहीं। कभी विश्वता का परिचय वाला परिचय विशेष करके कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि दूसरे दूसरे उदय में हमारा समय
से तो ये मतलब निकलता है
पहचान, ठीक है, पहली बात है जान पहचान, तो जानने पूर्वक पहचान होती है, इसलिए जान पहचान कहते हैं। क्योंकि पहचान में जानने का कार्य अवश्य है, जानकारी होती है, पहचान हमने कभी नहीं किया। आप चांदी के व्यापार करते थे, चांदी को हम भी चांदी ही कहते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये चांदी है, लेकिन पहचानते नहीं है कि ये चांदी है, क्योंकि इसमें और भी मिलावट रुपये के नहीं होती है। लेकिन भाई वो जानते हैं कराता है, प्रकार के जो अच्छी तरह मिल जाए किसी को पता ही नहीं पड़े, आम जनता को चांदी के रूप में खरीद लेकर चलने गहना अलंकार होता है, उसमें चांदी की कितनी तरह पोषण रखते हो, 70% कैसे देते हैं 100% का चांदी का भाव अभी 6,700 चल रहा है किलो का, आपको ये लगेगा 30% 40% 50% तक दूसरी चीज जो हल्की होती है भाव में वो चांदी के भाव में बिक जाती है और अच्छा मुनाफा मिलता है। क्या कहेंगे उसको हमारे धर्म के क्षेत्र में, उसको क्या कहते हैं
मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है, मतलब निर्माण करते हैं उसमें ऐसा नहीं है, उसमें तो बोल करनी है क्या क्या करते हैं, 1% 2% उसका धंधो फास्ट होता है।
रिटेल वाला करता है,
रिटेल वाला करता
है, रिटेल वाला
रिटेल वाला जी तो मायाचारी पूरी मायाचारी
जिसका फल गति में क्या इसका फल आता है
और जो चीज सतपुरुष अगर कोई पहचान में आना चाहता है तो ज्यादा परिचय में आना चाहता है तो उस मार्ग में अगर जोड़ा अटकाते रहते हैं तो उतना वर्तमान स्थिति में तो दर्शन मोह प्रबल है, तब तो ये काम कर ही रहे हैं और दर्शन मोह की वृद्धि भविष्य के लिए भी करते हैं, ऐसा ही है क्या?
जैसे परिणाम है उसको कोई नहीं आती, परिणाम संस्कृत विषयों में विषयांतर नहीं करते, सब शास्त्र का परिचय कहते हैं। आरंभ परिग्रह से हमारा रस छूट जाए और ऐसे परिणाम के, इस प्रकार के परिणाम के परिणाम में लेकर के हम शास्त्र का परिचय करें तो हम परिचय कर पाएंगे, वरना पढ़ तो जाएंगे या हम शस्त्र विचार हो जाएगा, भावना में भी आ जाएगा या बौद्धिक स्तर पर अच्छी तरह बुद्धि ग्राह्य भी हो जाएगा, किंतु उसका परिचय भावों का परिचय, वाच्य का परिचय, मर्म का परिचय ऐसा नहीं होगा।
परिचय की जगह भाव ज्ञान लें तो परिचय की जगह भाव ज्ञान, शास्त्र का भाव ज्ञान,
भाव ज्ञान होना, क्योंकि एक शब्द में एक भाव के लिए है, इस भाव को अगर हम नहीं पहचानते हैं तो शास्त्र पढ़ते हैं परिचय नहीं करते,
भाव ज्ञान नहीं करते।
एक शक्कर जैसे शब्द है और शक्कर पदार्थ भी है, शक्कर शब्द भी है और शक्कर पदार्थ भी है, तो पदार्थ को ज्ञान में भाव वाचे थोड़े नहीं है, शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, कौन है भगवान क्या शक्कर होती है, जैसे तोता नहीं जानता इसकी बात होती है। इस तरह से शास्त्र का परिचय विशेष रूप से कर्तव्य है, व्यावहारिक कार्यों की प्रवृत्ति करनी पड़ती हो तो इसका मतलब यह है कि जो संपन्न है जिसको कोई उपाधि करने का कारण नहीं है, मुख्य करके व्यवसाय लाभ तो नहीं है, तो जो भी जिसको भी है जो कार्य दूसरे में नहीं करा सकते हैं ऐसा कुछ भी हो तो इस उपाधि में नहीं जा रहा। जैसे काफी पैसे थोड़े की संपन्नता हो गई हो फिर हम क्यों इसके पीछे बढ़ते हैं, पूरी संपत्ति को हम खर्च नहीं कर पाए जितने आगे नहीं खर्च हो पाएंगे, फिर भी हमारा मनुष्य पने का अमूल्य समय हम क्यों बर्बाद करें। और किसी को ऐसा प्रयोग नहीं होता है तो उन लोगों को तो मेरे को ले लेते चाहिए, जिसको उपाधि चलनी पड़े ऐसा प्रसन्न उदय नहीं हो उसको तो निवृत्ति से आत्मकार्य में ही लग जाना चाहिए, पूरा समय और शक्ति का व्यय सदुपयोग कर लेना चाहिए, अपने आत्म कल्याण में समय शक्ति को लगा देना चाहिए। ये शुद्धि आज्ञा है सत्पुरुष की, ये शुद्धि आज्ञा है जिनेन्द्र देव की, लेकिन किसको ऐसा पुण्य नहीं है वो भी नहीं है बनता है संसार में, तो उसको अपने हाथ से अर्थोपार्जन करना पड़ता है, परिश्रम से करना पड़ता है, तो काम भी अपने परिश्रम से करना पड़ता है, खुद ही को करना पड़ता है, तो ऐसे करनी पड़ती हो उसका मतलब क्या है, अभिप्राय तो वो है कि कुछ मेरी निवृत्ति दिए और मैं पूरा समय और शक्ति मेरे आत्मकल्याण में लगा दो, ऐसा अभिप्राय होने से इस प्रकार का पुण्य योग नहीं होता है तो करनी पड़ती है ऐसा कहने में आता है। ऐसे महामारी कार्यों की प्रवृत्ति करनी पड़ती हो तो भी उसमें से उस वृत्ति को सीखती वृत्ति को उसमें तीव्र रस पर नहीं जानी चाहिए। जो आता है जो ना पड़ता है प्रवेश काल में उतना सफल हो जाना, प्रवेश काल में उतना जागृत हो जाना, उनमें जरा से प्रवृत्ति हो हमारे किसी भी उद्देश्य में क्यों जरा से प्रवृत्ति नहीं हो। और हमें रूपानंद के वचन है इस आशय में वहां पर कि ऐसी वृत्ति करने पर भी मन को भी समय से वृत्ति को मदद करना जो भी चाहता है, ऐसा जिसका अभिप्राय है, ऐसा जिसका प्रयास है, उत्साह है, वह भी चाहता है, प्रयास करता है तो ऐसा हो सकता है। वृत्ति निरस हो सकती है, जाते हैं तो ये अवरोध का निकालना है, हमें आगे बढ़ना है तो अवरोध को भी हमें हटाना चाहिए। अवरोध नहीं हटेगा तो हमारे लिए बढ़ता है, इसलिए हमारे परिणाम में जो दुर्गुण के परिणाम रूप रस है वही हमारा सबसे बड़ा अवरोध है। अनुकूलता को चाहते हैं, प्रतिकूलता को नहीं चाहते हैं, इस प्रकार उनको नहीं जाएगा। बात चुनी हुई क्या है कि हमारे रस पर हमारी जागृति है या नहीं, जब परिणाम हमारे चलते हैं उस वक्त हमारे आत्म जागृति हमारे परिणाम पर है या नहीं है। अनुकूलता को हटाओ, घटाओ, प्रतिकूलता को हटाओ, ऐसे तो मरते आए हैं इसमें ही मरते आए हैं। महावर उसी को ही कहते हैं और क्या कहते हैं महावर बात नहीं। वास्तव में तो हमें अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना ही छोड़नी है, वो कल्पना ही हमें छोड़नी है। क्या उस कल्पना में हम अनंत काल बिता चुके हैं, कल्पना से उतनी दृढ़ हो गई है कि उसको ही वास्तविकता मान करके उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये हालत तो होगी है, हम वही करेंगे, सत्ता को पढ़ करके या प्रयास करके पुरुषार्थ में भी वही करेंगे। प्रयास के काल में वो बातों में क्यों करेंगे, ऐसे जो निरस वृत्ति से उदय में प्रवर्तना चाहते हैं ऐसा कर सकता है। और अगर ऐसा करेगा तो सब शास्त्र के परिचय के अर्थ बहुत अवकाश प्राप्त हो जाएगा, समय से भी और शक्ति से भी, दो प्रकार से अवकाश देने का समय भी बच जाएगा। कार्य नहीं छोड़ेंगे, ये ठीक करो, ये ठीक करो, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, छोटी मोटी बात में परिणाम चीखने तो लगते ही रहेंगे, समझी लगती नहीं होगी तो समय चला जाएगा। और उसमें हमारी शक्ति ही हो जाती है तो शक्ति से जो काम करता है वो अवकाश निबंध हो गया, जिससे शक्ति काम करने लगती है, हमारा ज्ञान निर्भर होता है, कषाय रस टूटने पर मन होने से ज्ञान की निर्भरता होती है। तो ज्ञान सब शास्त्र का जो विषय है उसकी गहराई में जाने के लिए विशेष योग्यता को प्राप्त करता है,
वो उनका शक्ति में भी बढ़ता है और समय में भी बढ़ता है, वरना समय में भी नहीं बढ़ता और शक्ति में भी नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं कि बुद्धि कम हो जाती है, बुद्धि कितनी भी हो योग्यता कम हो जाती है, बुद्धि को भी रह जाती है लेकिन योग्यता है वो अयोग्यता को प्राप्त होती है। शास्त्र को अध्ययन करने वाले को ये बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। हम शास्त्र को सारे दिन पढ़ते रहे और उदय में भी रस लेते रहे। एक आदमी नहाने को बैठा स्नान करने को बहुत दस पसंद साबुन लगाया शैंपू लगाया पैसा लगाते हैं आदमी मुझे तो इतना मालूम नहीं है लेकिन गर्म लगाते हैं क्लीनर स्किन क्लीनर वो क्लीनर वो क्लीनर कहीं कहीं भी आते होंगे प्रसारण जिसको कहते हैं और जब जिस दिन बालते थे तो पूरे घर में सबसे डूब जाते ना तो सबसे बाथरूम में लगाते हैं और फिर बाद में एक ही टम्बलर संदान जैसे भर करके लगा दिया। क्या अनुपा क्या है कहा दस दिन बाद पाने और क्लिनिकेशन और कहा एक समझर गंदे पाने का कौन बढ़ गया एक समझ बढ़ गया इतना ज्यादा कमी कर गए और इतना क्लिनिकेशन के सामने वो बढ़ गया है एक ही संदर्भ है गंदे होने में तो एक ही संदर्भ है ऐसी बात हो जाती है। इसलिए हम शास्त्रों को भवन पढ़े सुनी साल पढ़े प्रवचन साल पढ़े जितने भी हम खरीद सकते उनमें सब पर डाले और खाने में लगे तो खाने में ही इतना रखा गया दुकान पर गए तो दुकान में ही इतना रखा गया कुछ भी उदय में कोई भले ही अब पंद्रह मिनट के लिए खाना खाते हैं दस मिनट के लिए खाता या ऑफिस में खाली दस मिनट का टेलीफोन अटेंड कर दिया एक टम्बलर बस है पूरी भलाई के लिए। ऐसी बात अनुपात से भी देखी जाती है उसमें रेशियो प्रोपोर्शन नहीं निकला जाता है कि ये तो दस दिन खाने के लिए तो एक ही टम्बलर था ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम जो कुछ करते हैं वो नहीं होने के नहीं किया बराबर हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बात
प्रैक्टिकल बना दी
भक्तों को ध्यान में रहता शास्त्र पढ़ने वालों को भक्तों को भी ध्यान में रहता है कि पढ़ने के बाद बुरे में हम क्या कर रहे हैं क्योंकि खाना पीना धंधा व्यापार कुछ परिस्थिति अनिवार्य है ऐसे उदय की कितनी उदय की परिस्थिति ही अनिवार्य है उस उदय में प्रवेश करना ही पड़ता है तो फिर अनिवार्य है तो क्या है तो उसको गौर कर दो जैसा जैसे अर्घत आ जाए तो ध्यान ही नहीं है चलो तो बढ़ना ही पड़ता है ऐसा विशेष रूप से यहां जागृति होनी चाहिए अगर ये नहीं होगा तो कितना भी शास्त्र का अध्ययन हो सब बेकार है और बेकार है कार्यकारी को नहीं है इसलिए बेकार है लेकिन अभिनिवेश का कारण भी हो सकता है शास्त्रानिवेश भी इसमें से हो सकता है एक नया रूप जो पहले नहीं था वो पैदा हो जाता है तो कृपा गुरु का जो मार्गदर्शन है बहुत पूरा ध्यान देने योग्य मार्गदर्शन है। आगे कहते हैं आरंभ परिग्रह पर से जिसकी वृत्ति खेल को प्राप्त हुई है इस तरफ आता ही नहीं है जिसको आता है नहीं उसको सावधान होकर के उसको निरस्त करना करनी चाहिए, लेकिन जिसको ऐसा विशेष विकास हो मुक्षता का, जिसको योग्यता कुछ विशेष हो और उसको कहना आता नहीं हो, चाहे वो सुनने के उदय हो चाहे वार्ता में कुछ भी हो, जिसको अपने उदय में रस नहीं आता हो ज्ञान, इसका मतलब क्या क्यों नहीं आता है? पता कथन क्या है बहुत सुंदर कि असार जान करके उस पक्ष से निरस हो गए हैं, कुछ भी हो मुझे तो अनुकूलता अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता प्रतिकूलता नहीं है, उसमें कोई बनी नहीं है, कोई सार नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, ऐसा जिसका विशेष योग्यता रूप परिणाम मनुष्य का में हुआ हो, ऐसे जीवों के ऐसे जीवों को सत्पुरुष का समागम और शास्त्र का श्रवण विशेष रूप से हितकारी हो जाता है। दोनों फल को क्लियर कर दिया है, जिसको नहीं हुआ है वो ऐसा करे, जिसको हुआ उनको तो बहुत लाभ मिल सकता है, उसको बहुत ही कुछ मिल सकता है, उसके लिए क्योंकि उसको अवरोध नहीं है, माइनस फाइव उसके लिए मिले विशेष रूप से यह प्रसंग हितकारी होता है। आत्म परिग्रह पर विशेष वृत्ति वर्तती हो जीव के सत्पुरुष के वचन का अथवा शास्त्र के बोध का परिणाम होना कठिन है, दुर्लभ है, क्योंकि वह उपाधि में गिरा हुआ है। यही स्वाध्याय मुंबई में हुए निवेश में, यही स्वाध्याय जलदारी में हुए, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर उपाधि साथ में रख करके साथ साथ श्रवण करने को बैठते हैं, कई प्रकार के काम निर्माण जो है तो टेलीफोन का कनेक्शन काट करके बैठ जाना, अंदर के टेलीफोन का कनेक्शन काट करके प्लग को छोड़ देना, वहां तो क्या है घंटे को बचते रहते हैं कोई बात पलने पड़ने वाली कनेक्शन तोड़ करके छोड़ करके निवृत्ति क्षेत्र में सब सात प्रकार है समागम जो निवृत्ति क्षेत्र में होता है, इससे 10% भी क्षेत्र में इसका नाम नहीं होता है, उतना बड़ा अंतर है, दंगुना से भी ज्यादा अंतर है, इतनी बात नहीं।
आठ हित में क्षेत्र बाधक है, आठ हित में क्षेत्र बाधक होता है,
अपनी वृत्ति बाधक होती है। अगर यहाँ भी उपाधि करें कितना स्वाध्याय पूरा हो जाएगा, फिर उसको टेलीफोन लगाना है, अभी तो राष्ट्रीय का काम हो जाएगा, लगा लेंगे बम्बई जहां भी अपना कारोबार हो, जरा बात कर ले, कम से कम परिवार से बात कर ले, ठीक तो हो अच्छे तो हो, हमने संपत्ति बना है क्या हो गया है, हमें किस काम के लिए आया हो, क्या काम कर रहे हैं, जो इधर रस लेते हो, जिस रस को वहां भी तोड़ना है, इस रस को यहां भी लेंगे और काम करने वाले तो मुंबई के ऑफिस में
वैकुंठ पर बैठ करके मुझे उपा देते हैं। यहाँ पर उपाधि तो बहुत है लेकिन समाधि है क्या
बहुत है समाधि
क्या देखते हैं कि कार्यों कार्य उतना उसका विशेष बोध मिल गया है। एक काम में तारों को दस काम तो लाइन में खराब हो रहे क्यों मैं आना चाहिए आपको ये मिलना चाहता फिर आपको ये मिलना चाहता है वो लोग बात करते हैं वो लोग बात करते हैं उपयोग को निवृत्ति नहीं मिलने ले रहे ऐसी हालत होती है ना जिसको बहुत काम होता है जेब में इतने काम में जो समाधि में रहते थे कैसे रहते होंगे
क्या बता दें
इसीलिए कहते हैं कि आश्चर्य की प्रतिमा है क्या है आश्चर्य आश्चर्य की प्रतिमा है समाधि ताकत है शक्ति है तो में भी उनके लिए डर जाता है चला जाता है
वृत्ति को करना और शास्त्र की गहराई में जाकर के परिचय करना उस परिचय में रुचि को लगाना शास्त्र के मर्म में रुचि को लगाना परिचय को मर्म में मर्म समझा जाता है शुरू शुरू में प्रथम में कठिन है कठिन सावधानी प्रारंभ प्रवेश करते हैं उनको वो कठिन पड़ता है क्योंकि क्यों कठिन पड़ता है कि जीवों का अनादि प्रकृति स्वभाव विशेष जुड़ा है प्रकृति स्वभाव विरुद्ध है जुड़ा मतलब क्या है
विरुद्ध है
विरुद्ध है सभी प्रकृति इन दोनों से विरुद्ध है जो सत्शास्त्र समागम और सत्शास्त्र का आत्महिता विषय है वो आत्मस्वभाव के अनुकूल है वो आत्मस्वभाव प्रकृति है वो भी प्रकृति स्वभाव और आत्मस्वभाव प्रतिपक्ष में है आमने सामने है इसलिए अपनी प्रकृति के साथ अपने को लड़ाई करनी पड़ती है क्या है एक मनुष्य के जीवन में एक स्टेज एक तबका एक स्तर ऐसा आता है कि जो उसको अपनी प्रकृति के साथ लड़ना पड़ता है वो भी कुछ हो स्वभाव से विरुद्ध ही है जिसको स्वभाव शक्ति का मिलन करना है क्या होता है उसको पहले भीतर में एक संग्रांगण पैदा हो जाता है लड़ाई का क्षेत्र हो जाता है और सूक्ष्म घर्षण होता है अपने आप को लड़ता है जो प्रकृति को लड़ता है और प्रकृति को निरस्त कर देता है जैसे किसी की क्रोध की प्रकृति है किसी की माया की प्रकृति है किसी की मान की प्रकृति है लोभ की प्रकृति है क्या आपको समझ में आए उसको दोष उसको पिता देने की बहुत अच्छी बात है समुचित प्रकृति हो वैसे तो संसारी जीवन में चारों चार है अनंता मंदिर के लेकिन कुछ एक या दो मुख्य हो जाती है कभी और बाकी के दोनों से जो परिणाम चलता है तो उस प्रकृति के सामने लड़ना पड़ता है उसके सामने झुंझना पड़ता है। ऐसा तो इस पर एक्सपीरियंस आता है। वहाँ बहुत विरुद्ध है, बिल्कुल सवाल से विरुद्ध है। क्योंकि जीवन का अनादि प्रकृति स्वभाव विरुद्ध है, इसलिए शुरू शुरू में क्या है, शुरू शुरू में उतना तैयारी नहीं है, उतनी योग्यता नहीं है, तो कठिन पड़ता है। प्रकृति में बने जाता है, जब जब प्रकृति का उदय आता है दूसरे में, तो वह जाता है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए बात कठिन भी पड़ेगा, किसी को कठिन लगता है, कठिन पड़ता है, अभी होगा तो भी ऐसा हो तो भी घबराने की बात नहीं। ऐसा भी रास्ता है, बहुत महत्वपूर्ण दिया है, तो भी जिसको ऐसा करने का निश्चय किया निर्धार किया है कि प्रकृति को हराना ही है तो ना ही है, और हमें आत्म कल्याण करना ही है, किसी भी कीमत से करना है, तो ऐसा कर सकता है, तो ऐसा कर सकता है। दूसरा नहीं किया है कहा इधर, ऐसे जिन्हों ने ऐसा किया है, मैंने वो सक्सेस गए थे नहीं, निर्धार करने वाले कोई होते नहीं, जिसका व्यवहार नहीं है उसका ठिकाना देश नहीं है। की बात थोड़ा करेगा, थोड़ा उधर जाएगा, थोड़ा उधर जाएगा, और फिर वो निष्फल हो जाएगा, आगे जाकर के निष्फल हो जाएगा। लेकिन उसका निर्धार है, भाई मेरी प्रकृति कैसी भी है, जानता हूं कि मेरी बहुत बुरी परिणाम की स्थिति है, अच्छी नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है, ऐसा जानता है, फिर नजर मुझे तोड़ना ही है और मेरा आत्मकल्याण करना ही है, तो कर सकते हैं। और बहुतों ने ऐसा किया है, जितने भी मोक्ष को प्राप्त हुए वे सब हमारे जैसे संसारी थे
जी।
सिद्धालय में गए हुए एक भी शुद्ध परमात्मा ऐसा नहीं है कि जो निगुण है जी, क्या परिणाम की जो बड़ी स्थिति है इसका फल निगुण है, या शुभ परिषण है इसे आगे कोई नहीं है, इसका फल गिर नहीं जाता है, जुड़ा जाता है, एक भी शुद्ध ऐसे नहीं है, अनंत शुद्ध भगवान ऐसे एक भी आत्मा ऐसी नहीं है कि जो जुगुर जुगुर में प्रेम नहीं थी। तो वहां तो पूरी की पूरी प्रकृति सभी प्रकृतियों का मैं दब गया है, आत्मा इतना दब गया है कि इसका पता ही नहीं, इतना लापता हो गया है, बिल्कुल इतना दब गया है, सब विरोध में गया। तो लोग संसार को दूसरे रूप में मानने को तैयार नहीं है, जीव है
जीव
है, जीवित शास्त्र को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, कब ऐसे कुछ दिन है तो की बात
बिल्कुल
है। हमारी हालत बहुत अच्छी है, मनुष्य है, मनुष्य जरूरी नहीं है, भगवान जिनेन्द्र परमात्मा का मार्ग बिल्कुल साफ सुख होकर के सुखा हमारे सामने हमको मिल रहा है, और हम इस मार्ग को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शक्तिमान है, सक्षम है, हमारी क्षमता है, योग्यता को हमें लाना है और ला सकते हैं। उतना सौभाग्य है हमारा, गुरुदेव की भाषा में कहे तो कुछ गुरुदेव होते थे तो सब अवसर आ चुका है, अब तो पूर्ण होता है, तो
और कुर्बान लोगों को समझने में तो वो तो रांडे हुए मांडे हुए साथ हर्षार वाली क्यों होती है महिलाओं का होता है आदमी तो बंद होते ही नहीं है और वो तो बात बात में ऐसे दिलाते हैं तो कहते हैं कि जिसका धनी भर गया उसको होती है बेचारे क्या करे इसका धनी भर गया पर किसी का जो धनी है कमजोर होता है उसको रोगी होती है लेकिन साथ साथ में जिसको हो रोगी लोग हैं ऐसी तरह हालत क्यों कहे तो सबल से छूट कर आ चुका है तो बार उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि वो लड़की की कहावत वैसे तो ऐ गंभीर है आंसू आता है उसके लिए ऐ गंभीर है लेकिन उसका आशय कुछ गंभीर होने से इधर मैंने लिखा तो गंभीरता मिल जाए कि गंभीर आशय है बात कुछ शब्द शब्दार्थ से ऐ गंभीर बनती है आशय से बहुत गंभीर है कि सुरेंद्र तो सब आ चुका है कुछ नहीं है तेरे को काम अपना नहीं होने आत्मकल्याण नहीं होने ऐसे कोई बात ही नहीं है तेरे को तुम क्यों फालतू उपाधि में बच जाता हो समझ में नहीं आता इसलिए वो तो ऐसे कर सके हैं इसलिए विशेष उत्साह रख करके क्या गुरुओं आपके बात किया है देव ने आगे चुके हैं पूरे सन्मान का आत्मकल्याण करने का अधिकारी भी कौन होता है जो गुरुओं लाख में आता है विशेष बात है एक न्याय से मनुष्य की भूमिका में आने वाले कई कई मनुष्यों को वैराग्य प्राप्त होता है तो कषाय की नुकसान प्राप्त होती है उनको देवगुरु शास्त्र के वचन पर आस्थावी होती है उनको कषाय की शांतता वैराग्य होता है अनुकंपा होती है अनुकंपा में और भी किसी भी कोई भी जीव को हमारे कारण से दुख न हो ऐसी अनुकंपा भावी रक्षण संवेद निर्वे आस्था अनुकंपा सुषम मेरे उत्सम है निर्वे मेरे विराज है आस्था है वो हमारी श्रद्धा और विश्वास में तो निर्धारण सत्य है अनुकंपा भी होती है लेकिन संवेद में विवेदास बहुत कम जीव में होता है और काम होता है विजयोल्लास ये चार होते हुए भी अगर विजयोल्लास नहीं होता है तो काम नहीं होता है इसलिए बलदेव के शब्द बात इस तरह से आई है कि निराशित विद्वान तत्व पाने का मुख्य अधिकारी है मुख्य अधिकारी क्या लिखा है जो निराशित विद्वान मुक्त होता है उस तत्व ग्रहण करने का मुख्य अधिकारी होता है तो मनुष्य होते भी निरुपाय खड़े नहीं होते हैं उत्पन्न नहीं होती है उसका निर्माण सूचन किया है इधर भी कि विशेष उत्साह रख करके विरोध से उल्लासित देने से ऐसे आत्मनिति आत्मकल्याण की प्रवृत्ति कर्तव्य है करने योग्य है ऐसे हारना नहीं निरुत्साह नहीं होना क्या फिर से हमने दोस्त अवलोकन करते हैं तो बहुत दोस्त देखते हैं फिर निरुत्साह हो जाते हैं उतनी नहीं है हमारे इतने तो बस ये नुकसान हो जाता है तो क्या ठीक है हमें गुण को देख करके और दोषों को भी देख करके हमारा तो भंग स्वास्थ्य है दोष देख करके दोष को टालने के लिए हम वापिस नहीं है और गुण देख करके गुण गुण को जुटाने के लिए हमारा तो रंग निरुत्साह इसलिए विशेष उत्साह करके प्रवर्तित करने योग्य है सभी मोक्षों को
सभी
सिर्फ सुभाष भाई के परिवार को इसलिए संबोधन तो सुभाष भाई के परिवार को पत्र संबोधन है सिर्फ लिखा है कि सभी मोक्षों को इस बात का निश्चय निर्धार ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए सब कुछ चलेगा जीवन में सब कुछ चलेगा मेरा आत्मविश के बिना नहीं चल सकता सब कुछ चल सकता है ऐसा निश्चय होना निर्धार होना इस बात का निश्चय और नित्य नियम कर लेना चाहिए दूसरा नियम नहीं कोई बात नहीं इसका नियम देखो और नित्य होना चाहिए हफ्ते में जो हफ्ते में जो भी इच्छा जय कर रहा ऐसी बात नित्य नहीं रोज खाते हैं रोज निगरी लेते हैं रोज पैसा भी कमाने को जाना पड़ता है तो फिर ये हमारे जीवन के एक अंश में ये बात क्यों नहीं अरे एक अंश में है तो मुख्य बात इसकी हो जाएगी कि भले ही भाई घंटा कोई घंटा दूसरी बात होगी इसकी गौरता हो जाएगी समय का कैलकुलेशन इसमें नहीं होता है मुख्य बात मूर्ता की गिनती इसमें होती है कि टाइप का कैलकुलेशन होता है हमारी मुख्य बात को इस बात का निश्चय करना चाहिए नित्य नियम भी करना चाहिए इस विषय में प्रमाण में दूसरे काम में लग जाना उधर से जुड़ जाना इसी का नाम प्रमाण है हमारे आत्मनिष्ठ प्रयास को विस्मरण कर देना यही प्रमाण है प्रमाण अनियमितता जैसे खाने में हम नियमित खाएंगे तो तंदुरुस्ती सोने में नियमित सोएंगे तो तंदुरुस्ती बनी ये शरीर की हम हमारे आत्मकल्याण में नियमित हो जाएंगे तो इसकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी वरना आप लागे ही है निकलेगा ही नहीं भावरों को आत्मा को लागे ही है इसलिए अनियमितता है उसको टाल लेना टालना चाहिए इस विषय में प्रमाण भी नहीं करना अनियमितता भी नहीं लगना देखिए गुरुदेव का जीवन हमारे लिए जीवन के काम है वो जब बंधन में लगे थे दुकान पर बैठे थे तब भी दुकान पर साथ निकला भी कहें मिला मैं तो खरीद कर रहे थे कहने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका चित्त ही मान रखता है और कहीं रखता नहीं है तो जैसे वो जरूरत की चीज है व्यापार करना खाना पीना इससे ज्यादा जरूरत की चीज हमारी आत्मकल्याण की है इसका निश्चय हो गया तो नियमित रूप से हमेशा सुबह हम स्वाध्याय कर रखते हैं हमारे अपने दलों में
गुरुदेव की आज्ञा से गुरुदेव के रोज से जो भी हमारे यहाँ पात्र दर्शन नियमित रूप से कहते हैं कि हमेशा सुबह एक घंटा स्वाध्याय करना उसका टाइम फिक्स करना कोई प्रतिक्रिया ऐसा नहीं चले समय पर उपस्थित होना और नियमित रूप से स्वाध्याय करना ऐसा क्यों ऐसा भी होता है तो जीव के परिणाम का ठिकाना भी रहने वाला नहीं है ऐसी बात हो जाती है इसलिए नियमित रूप से होना ऐसी श्री गुरु की सदगुरु की आज्ञा है प्रमाण है और ये हमें माथे चढ़ाना चाहिए शिवसा वंद्य कहते हैं क्या कहते हैं उसको शिवसा वंद्य एक आज्ञा शिवसा वंद्य होनी चाहिए पत्र यहाँ पूरा होता है और श्री भाई की ओर से और सभी सुना है पत्रांत 201 करना है स्वाध्याय में लेना है या और लेना है तो कोई दूसरा को बता दीजिए अपने वर्ण के साथ शोभा सुनाई पर लिखा हुआ पत्र लिखा है महाभगवीर को इसके आगे मैंने एक दूसरे नंबर का जो पत्र लिखा है रचनावली करके वचनावली लिखी थी उनके पुत्र मैं भाई के लिए सुभाष भाई ने विनती किया था कि मेरा पुत्र मणि है मणि के लिए आप कुछ लिखते दे दो इसका कल्याण हो जाए ऐसा एक विनती किया था उन्होंने 14 वचन लिखे हैं बहुत सुंदर वचनावली 200 वो सुभाष भाई के पुत्र के लिए लिखे थे लेकिन हर मनुष्य के लिए सुभाष काम के लिए और इस पत्र में 201 में ये 200 नंबर वाले तो उन्होंने क्या कहा कि ये संत का अद्भुत मार्ग है इस पत्र को शीर्षक दे दिया है 201 में 200 पत्र का शीर्षक 201 में बताया है कुछ लिखा है थोड़ा एडवांस मणि को भेजी हुई वचनावली में बड़ी जनगणी आई मणि को भेजी हुई वचनावली में आपकी प्रसन्नता हुई वही हमारी प्रसन्नता को उत्तेजना की प्राप्ति हुई क्या
हमारी प्रसन्नता
होती है क्या शैली है अपने भाव को अभिव्यक्त करने की ताकत होती है कलम है कि ये बचना है उस पढ़कर के आपको भी बहुत प्रसन्नता हुई मैंने तो मणि भाई के लिए देने थी आपको बहुत प्रसन्नता हुई तो उस प्रसन्नता का समाचार पढ़कर के मुझे भी मेरी आपके प्रति जो प्रसन्नता है उसमें उत्तेजना आ गई संघ का अद्भुत मार्ग उसमें प्रकाशन किया है क्या लिखा संत का अद्भुत मार्ग उसने हमें प्रकाशित किया है कितने लिखा है तो ये जो सत्र है
अद्भुत बाल थोड़ा पहले बता दीजिए वो तो चंदा के चंदा रहना पड़ेगा उसको 3 घंटा वाला लगे वो भी 20 मिनट का और पत्र ही रह जाएगा वही कलर चलता रहेगा 2-3 घंटा ऐसी बात है। इसलिए मूल पत्र पर आते हैं ये जो थोड़ा निर्देश हो गया पत्र का विधि से है केवल निर्विकार होने पर भी परम प्रेममय चराभक्ति के वश होता है या हृदय में जिसने अनुभव किया है ऐसे ज्ञानियों की यह गुप्त शिक्षा है। क्या भगवत वचनामृत निकला है यह एक ज्ञानियों की गुप्त शिक्षा लिखे चले गया तो बात पीछे के शब्द में लिखी है उसको ऐसे लेना यह एक ज्ञानियों की गुप्त शिक्षा है। क्या ज्ञानियों की शिक्षा का 2 प्रकार बोल का 2 प्रकार एक गुप्त और एक प्रकट। गुप्त को मैंने सीक्रेट क्या है रहस्यमय कई बातें टॉप सीक्रेट की होती है कई बात खुली होती है जो गंभीर होती है मूल्यवान होती है उसकी सीक्रेसी होनी चाहिए रहनी चाहिए ऐसी बात है। तो कहते हैं कि ज्ञानियों के हृदय में नहीं हुई एक गुप्त बात इस वचन में हम खोल रहे हैं प्रकट कर रहे हैं। मतलब आप इस बात को की किसी गंभीरता को अवधारण करिए ऐसे अगंभीरता से उसको पढ़ करके निकाल देना जरूरी नहीं है ऐसी बात है। अब तो यही है वो समय कि परब्रह्म कैसा है परब्रह्म मैंने अपनी आत्मा त्रिकालय ध्रुव अब उस अविचलित स्वभाव क्या निकट कैसा है वो केवल निर्विकार उसमें फीलिंग नहीं होती क्या विकृति नहीं आती सब सामर्थ्य रूप है वो परिपूर्ण शुद्ध है परिपूर्ण पवित्र है संपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी है एकांत अंतर्मुख स्वभावी है एकांत निर्विकल्प है ऐसी आत्मा केवल निर्विकार होने पर भी परम ब्रह्म उसको कहते हैं। परम ब्रह्म मैंने परम ब्रह्म ये शब्द इसलिए प्रयोग किया है ये वेदांत की परिभाषा का शब्द है जैन परिभाषा में इसका प्रयोग बहुत कुछ है कुछ कम है आया तो सिर्फ भगवान के वाणी में बात लेकिन कुछ लोगों ने नया पंथ निकाला तो कुछ शब्द को बहुत प्रयोग करने लग गए तो वेद परिभाषा में उसका प्रयोग कम इसलिए हुआ कि दोनों में कोई भ्रमित नहीं हो जाए और सुभाष भाई प्रारंभ में मिले हैं महावत्री 24 साल का उससे मेरा परिचय है और वो कुछ वेदांत की और धर्म वाले भी थे ऐसा कुछ संगति उनको था उस संग के कारण के उनके धर्म वेदांत के तो उनकी भाषा में ट्रीटमेंट दे रहे हैं बच्चों को दवाई की गोली ऊपर शक्कर का लेप लगा करके देने में पतासे में देते हैं पतासे बोलते हैं हिंदू
पतासे
इसमें दवाई छिटा करके खिला देते हैं खिला के ऐसे कृपालु देव का ट्रीटमेंट देने का बहुत विशिक्षण प्रकार था बहुत मैंने असाधारण असामान्य ऐसा प्रज्ञावंत महापुरुष से ऐसा कर सकता है
सुस्त करता हूँ, कहाँ से निकाल कर काम कर लेते हैं। तो सुभाष भाई को निकाल रहे हैं, अभी जहाँ वो आ गए हैं वहां से, कि ये परब्रह्म की बात आप करते हो कभी कभी, वहां से कहते हैं वो लोग भी कहते हैं ये केवल निर्विकार होता है। परब्रह्म कैसा होता है? केवल निर्विकार होता है,
अपरिणामी
है,
अपरिणामी।
हाँ, अपरिणामी, ठीक है, अपरिणामी भी है, कुतस्थ भी है, हम दोनों शब्द का प्रयोग निश्चित शब्द बात है, परिणामी भी और कुतस्थ भी, दोनों का प्रयोग आता है। ध्रुव, ध्रुव का भी आता है, ध्रुव है, परिणामी है, कुतस्थ है, प्रकार एक रूप है, शुद्ध है, परम शुद्ध है, केवल निर्विकार है, हजारों विशिष्ट हैं। अब निर्विकार है, प्रेम कैसे करता है ये कहते हैं, क्या है ये भाषा अलंकार है, सुपर प्रेम तो विकारी परिणाम है और परब्रह्म तो केवल निर्विकार है, फिर भी जिसकी पराभक्ति प्रेम में होती है तो उसको विवश होना पड़ता है। ये कहते हैं, देखो किसके कब्जे में आता है वो, ऐसा परब्रह्म किसके कब्जे में आता है, कि जिस ज्ञानी के परिणाम अनन्य रूप से उसमें लगते हैं, क्या परिणाम और परिणाम जो नहीं रहते हैं, परिणाम और अपरिणाम भी जो नहीं रहते हैं, ऐसी स्थिति में अनन्यता अनुभव में आती है, महसूस होती है, इसको पराभक्ति कहते हैं, अनन्य भक्ति कहते हैं। ऐसे अनन्य भक्ति को उसको भी स्वस्थ होना पड़ता है, क्या उसके कब्जे में उसको आना पड़ता है। ज्ञानी की जो दृष्टि है, जड़ दृष्टि, शून्य दृष्टि है, वो पूरा त्रिकाली ध्रुव आत्मा को कब्जे में ले लेता है, कब्जे में रखता है। अब आत्मा बड़ा या इसकी दृष्टि बड़ी,